आरवी की विहान से पहली मुलाकात के साथ साथ उससे दूसरी मुलाकात भी बेकार रही। रश्मि ने विहान को खूब सुनाया, शायद अगर आरवी नहीं रोकती तो उसको मारने भी लगती। आरवी कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती थी, इसलिए बार बार वो खामोश रही और अपनी कसम देकर रश्मि को भी चुप रहने पर मजबूर कर दिया। और कर भी क्या सकती थी, कॉलेज में बताती तो बात घर तक पहुंच ही जाती और वो अनुपमा जी को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुप रह गई। पर शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वक्त बीत रहा था, आरवी की चुप्पी से विहान की हरकतें बढ़ती जा रही थीं। वो खुलेआम आरवी को परेशान करने लगा था। विहान की गुंडे जैसी छवि थी, कॉलेज में सब उससे डरते थे, कोई कुछ नहीं कहता था, हालांकि आरवी हर बार उसको मुंह तोड़ जवाब देकर निकल जाती थी। रश्मि उसकी कसम की वजह से चुप रहती थी, सारे कॉलेज में उन्हीं के चर्चे थे, पर आरवी लोगों की बकवास बातों को अनसुना कर देती थी और पढ़ाई पर ध्यान लगाती थी। कुछ उसे सही कहते तो कुछ गलत, सभी समझ रहे थे कि विहान ही उसके पीछे पड़ा है, वो तो उसे घास तक नहीं डालती थी। जहां आरवी जाती, विहान भी अपने गैंग के साथ वहां पहुंच जाता। आरवी को डांस का बहुत शौक था, उसके एनुअल फंक्शन के डांस में रश्मि के साथ पार्टिसिपेट किया, पर वहां भी विहान टपक गया तो आरवी ने बैकआउट कर लिया। कैंटीन जाती तो विहान के डर के वजह से कैंटीन वाला लड़का उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देता, जो आरवी को पसंद नहीं था, इसलिए उसने वहां जाना छोड़ दिया। लाइब्रेरी में जाकर बैठती तो वहां भी विहान आ जाता और उससे चिपकने के बहाने ढूंढता, तो आरवी ने वहां जाना भी छोड़ दिया। रश्मि ही उसके लिए बुक्स ले आती थी और आरवी क्लास में बैठकर ही उन्हें पढ़ती या घर जाकर पढ़ लेती। छुट्टी होते ही विहान की बाइक उसके सामने आकर रुकती, पर आरवी उसको नज़रअंदाज करके रश्मि के साथ बस से निकल जाती, जितना होता उससे दूर रहती। जब तंग आ जाती तो भड़क उठती उस पर। वक्त बीतता गया, विहान उसके पास आने की कोशिश करता, उससे बात करने की कोशिश करता, पर आरवी आम लड़कियों की तरह नहीं थी, उसके जीवन का एक लक्ष्य था जिससे वो भटक नहीं सकती थी। उससे भी बड़ी बात थी कि विहान की हर बढ़ती कोशिश के साथ आरवी की उसके लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। वो उसकी हर गलत हरकत का जवाब देती, पर विहान मानने वालों में से नहीं था। 3 साल बीत गए, आरवी ने जैसे तैसे कॉलेज कंप्लीट किया। रश्मि के हमेशा साथ होने की वजह से विहान को उसके साथ कुछ गलत करने का मौका नहीं मिल सका। छूने की कोशिश भी करता तो आरवी थप्पड़ जड़कर वहां से निकल जाती। वो ऐसे तो उसको नज़रअंदाज करने की पूरी कोशिश करती, क्योंकि बेवजह किसी से उलझना उसका नेचर नहीं था। फिर विहान था भी बदतमीज, इसलिए जितना हो सके उससे दूर ही रहती, पर जब पानी सर से ऊपर चढ़ जाता तो उसकी गलत हरकतों को करारा जवाब भी देती, यही उसकी खासियत थी। उनकी फेयरवेल पार्टी थी, डिपार्टमेंट की पार्टी थी, तो विहान का वहां होना नामुमकिन था। रश्मि के साथ आरवी बैठी हुई थी। कॉलेज के किसी फंक्शन में वो दोनों नहीं आए थे, फ्रेशर के बाद सीधा फेयरवेल अटेंड कर रहे थे, वो भी रश्मि का बहुत मन था, इसलिए रश्मि ने उसे फोर्स नहीं किया था, उसने तो जिक्र भी नहीं किया था। पर आरवी समझ गई थी कि उसकी वजह से रश्मि अपनी कॉलेज लाइफ को बिल्कुल एंजॉय नहीं कर सकी, इसलिए उसने ही आने की बात कही। आज भी उसके कुर्ता और लगी के साथ गले में दुपट्टा डाला हुआ था, सामने प्रोग्राम चल रहा था। आरवी को प्यास लगी तो वो साइड में लगे वाटर टैंक के पास आ गई, पहले से वहां ग्लास में पानी भरकर रखा हुआ था ताकि आने वाला सीधा पानी पी ले, ये जूनियर्स ने किया था उनके लिए। कोल्ड ड्रिंक भी थी और खाने पीने का भी इंतजाम किया हुआ था। आरवी ने ग्लास उठाया और पानी पीने के बाद जैसे ही मुड़ी, एक लड़की ने उसकी तरफ कोल्ड ड्रिंक की बॉटल बढ़ा दी, तो आरवी लेकर वापस अपनी जगह पर चली गई। रश्मि पहले ही कोल्ड ड्रिंक पी रही थी, तो आरवी ने उस बॉटल को खोलकर अपने लबों से लगा लिया। अप्रैल का महीना था तो गर्मी वैसे ही बहुत थी, उसने एक बार में ही पूरी बॉटल खाली कर दी। अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि उसको वॉमिटिंग जैसा फील होने लगा, तो कुछ देर में वापस आने का बोलकर आरवी अकेले ही वॉशरूम के लिए निकल गई। उसका सर भारी हो रहा था, पलकें बंद हो रही थी। वो फर्स्ट फ्लोर के वॉशरूम में पहुंची तो बाहर अंडर मेंटेनेंस का बोर्ड देख वो सीढ़ियों से ऊपर चली गई। जैसे ही वॉशरूम के बाहर पहुंची, किसी ने उसकी कमर को जकड़ते हुए उसको बगल वाले रूम के अंदर खींच लिया। इसके साथ ही उसके कंधे पर किसी की हथेली ने स्पर्श किया और आरवी चौंक कर अपनी यादों से बाहर आ गई। उसने घबराकर सर घुमाकर देखा तो पीछे शान खड़ा उसे ही देख रहा था। इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो अकेले? शान की हमेशा वाली सख्त आवाज उसके कानों से पड़ी तो आरवी ने अपनी घबराहट छुपाते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, नींद खुल गई थी फिर आई नहीं, मौसम भी अच्छा था तो यहाँ बैठ गई। आप यहाँ कैसे? शान ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, नींद खुली तुम वहाँ नहीं थी, बालकनी की लाइट जल रही थी, मौसम भी खराब था तो देखने आ गया। आपके पास अगर थोड़ा वक्त हो तो मेरे साथ बैठ जाइए, मुझे आपको कुछ बताना है। बहुत रात हो रही है, अंदर चलकर सो जाओ, जो बताना हो बाद में बता लेना। मेरा अभी बताना जरूरी है, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, आरवी ने उसको मनाने की कोशिश की, पर शान ने अंदर जाते हुए कहा, न मैं कहीं भागा जा रहा हूँ ना ही तुम, बात बाद में भी हो सकती है, अभी आकर सो जाओ, रात सोने के लिए होती है, बातें करने के लिए नहीं होती। एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, आरवी ने फिर से कहना चाहा, पर शान जा चुका था तो वो उदास हो गई, एक बार फिर अतीत के बारे में सोचने लगी। अगले दिन उसकी आंख खुली तो वो अपने रूम में थी। अनुपमा जी ने बताया कि कल उसकी तबीयत खराब थी तो बाथरूम में बेहोश हो गई थी। रश्मि उसे ढूंढते हुए वहां पहुंची और फिर उसे घर लेकर आई। आरवी ने बात पर विश्वास कर लिया पर वो थोड़ी परेशान थी क्योंकि उसे कुछ याद नहीं था। तुम अंदर आती हो या नहीं, इस आवाज ने आरवी को वापस वर्तमान में ला दिया। शान की ही आवाज थी ये। आरवी मुंह फुलाते हुए उठकर अंदर चली गई। शान अपनी जगह पर आंखें बंद की और आंखों को अपनी बांह से ढके हुए लेटा हुआ था। आरवी भी अपनी जगह बैठ गई, फिर उसको देखकर बोली, मिस्टर मल्होत्रा मेरी बात सुन लीजिए ना, बहुत जरूरी है। चुपचाप सो जाओ, शान की सख्त रौबदार आवाज उसके कानों से टकराई। आरवी ने घूरकर शान को देखा और गुस्से में मुंह फेरकर लेट गई और शान को मन ही मन कोसते हुए सो गई। कुछ देर बाद जब शान को एहसास हुआ कि आरवी सो गई है तो वो उठकर बैठ गया और आरवी को देखते हुए मन ही मन बोला, आज जो तुम्हारी आंखों में मैंने देखा उसके बाद पता नहीं क्यों पर तुम्हारी बात सुनने से डर लग रहा था, जैसे तुम कुछ ऐसा बताने वाली हो जो मेरा दिल सुनना नहीं चाहता। पता नहीं क्यों पर मैं नहीं सुन सका तुम्हारी बात। वो उदास आंखों से उसे देखा फिर वापस लेट गया। बिहान का अचानक वापस उनकी जिंदगी में आना उसे बेचैन किए हुए था और अब वो अचानक ही गायब भी हो गया था। आज खुद मिलने बुलाया पर आया ही नहीं। शान ये सोचकर परेशान था कि आखिर क्या है उसके पास जिसके लिए वो आरवी को धमका रहा था। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर विला का माहौल आज बहुत गर्म था। न्यूज पर आज की ब्रेकिंग न्यूज दिखाई जा रही थी। निया की शान की बाहों में गिरने वाली तस्वीर बार बार दिखाई जा रही थी और साथ ही रिपोर्टर अपने हिसाब से न्यूज को नमक मिर्च लगाकर पेश कर रहे थे, जिस वजह से अर्जुन का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था और लिविंग रूम यहां से वहां घूम रहा था। अमरजीत जी सोफे पर बैठे बिना किसी भाव के सामने टीवी पर दिखाई जा रहे न्यूज को देख रहे थे।
रात के करीब 10 बजे निया ने घर के अंदर कदम रखा। दोनों की नजरें दरवाजे की तरफ घूम गईं। निया ने एक कदम अंदर रखा ही था कि उसकी कानों में अर्जुन की कड़क रौबदार आवाज पड़ी, इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? आवाज सुनकर निया ने उसकी तरफ नजरें घुमाई तो अर्जुन को इतने गुस्से में देखकर उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसने उसके पास आते हुए चिंता जताते हुए कहा, क्या हुआ बेबी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मैंने पूछा कहाँ थी अब तक, अर्जुन ने एक बार फिर गुस्से में सवाल किया। निया पहले थोड़ी हैरान हो गई क्योंकि अर्जुन उस पर कभी गुस्सा नहीं करता था, पर फिर थोड़ा आगे आने पर उसके कानों में टीवी पर बोलते रिपोर्टर की आवाज़ गई तो वो सारा माजरा समझ गई और जैसे वहाँ शरीफ बनने का नाटक करके निकल गई थी वैसे ही यहाँ भी उन्हें अपनी बातों में फंसाने के लिए उसने बहुत मासूम बनते हुए कहा, वो आज मैं ब्लू हेवन होटल गई थी, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया था पर तुम्हें कुछ बताने से पहले वहाँ मीडिया पहुँच गई, पता नहीं उन्हें कैसे पता चला, उन्होंने मुझसे बहुत से घटिया सवाल किए और मैंने उन्हें सब सच बता दिया कि वहाँ मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने गई थी। क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की, क्या हमारा घर तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं था जो तुम उस होटल में चली गई? पता भी है अब तुम्हारी इस हरकत की वजह से मीडिया को हमारे परिवार पर कमेंट करने का मौका मिल गया, उन्हें सच्चाई से कभी कोई मतलब ही नहीं होता, उन्हें तो मसाला मिल गया और अब वो इस मामले को और भी बढ़ा चढ़ा कर दिखाएंगे। अर्जुन अब भी काफ़ी गुस्से में था, वो चुप हुआ तो अब इतनी देर खामोशी से सब सुन रहे अमरजीत ने कुछ गुस्से और नाराज़गी भरे लहजे में कहा, आपको ये सब अभी करने का वक्त मिला था, आप जानती हैं एक हफ्ते बाद पार्टी टिकट देने वाली है, सालों से मेयर के इलेक्शन के लिए मेहनत कर रहे हैं और आज जब हमारा सपना सच होने वाला है तब आपने अपनी बेवकूफ़ी से हमारे रास्ते में रुकावटों को ला दिया है। हम पूछते हैं क्या ज़रूरत थी आपको वहाँ जाने की, क्या हमारा घर आपके लिए छोटा पड़ता है, कोई यहाँ आपको डिस्टर्ब करता है जो आप वहाँ गई थी? अगर आपको इतना ही वहाँ जाने का मन था तो अर्जुन को अपने साथ लेकर जाती, अकेले क्यों गई आप? आपने हमारी सालों की मेहनत को मिट्टी में मिलाने का फैसला किया हुआ है क्या? आपकी वजह से अब हमारे परिवार का नाम न्यूज़ में उछाला जा रहा है, इसका सीधा सीधा असर इलेक्शन पर पड़ेगा, पर आपको या तो कुछ समझ नहीं आता या आप जानबूझकर हर बार कोई ना कोई ऐसा काम करती हैं जिस वजह से हमारे परिवार पर लोगों को उंगली उठाने का मौका मिले। आए दिन आप सुर्खियों में होती हैं, हमें समझ नहीं आता कि आपके साथ सब अनजाने में हो जाता है या आप जानबूझकर हमें परेशान करने का नया नया तरीका निकालती हैं। आप गलत समझ रहे हैं डैड, मैं इस घर की बहू हूँ इसलिए हर बार मेरी गलती ना होते हुए भी मेरा नाम न्यूज़ में उछाला जाता है, मैं कुछ भी जानबूझकर नहीं करती हूँ, बहुत अलर्ट रहती हूँ मैं, फिर इस लाइन में ये सब तो होता ही रहता है। निया ने सफाई देनी चाही, इस बार अर्जुन उसकी बात सुनकर गुस्से में बोला, हाँ होता रहता है पर हर चीज़ का एक वक्त होता है, जब तुम जानती हो कि इलेक्शन सर पर है फिर ऐसी लापरवाही करने का क्या मतलब हुआ? मैं बस तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी, तुम काम को लेकर बहुत स्ट्रेस्ड थे इसलिए मैं तुम्हें घर और ऑफिस से बाहर किसी जगह लेकर जाना चाहती थी ताकि तुम रिलैक्स हो सकें, मुझे नहीं पता था कि मीडिया वहाँ पहुँच जाएगी और इतनी सी बात का इतना बड़ा इशू बना देगी, क्या अब मैं उनके डर से तुमसे प्यार करना और तुम्हारे बारे में सोचना भी छोड़ दूँ? मैंने तुम्हारे बारे में ही सोचा था और अब तुम ही मुझ पर शक कर रहे हो, मुझ पर गुस्सा कर रहे हो, निया ने मुँह लटकाते हुए कहा, जैसे जाने कितनी ही दुखी हो। अब अर्जुन थोड़ा सॉफ्ट पड़ गया और आराम से बोला, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा, बस कह रहा हूँ कि इस वक्त हमारी थोड़ी सी भी लापरवाही डैड की सालों की मेहनत को बर्बाद कर सकती है, इसलिए हमें कुछ भी करने से पहले और कोई भी कदम उठाने से पहले बहुत सोचने और समझने की ज़रूरत है, इस वक्त हमें फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाने चाहिए। मैं समझ गई मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब उसने अमरजीत जी की तरफ मुड़कर कहा, सॉरी डैड, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, मुझे माफ कर दीजिए। आई प्रॉमिस आगे से मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। यही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि इसके बाद हम आपकी कोई गलती माफ भी नहीं करेंगे, अमरजीत जी ने गुस्से से कहा और अपने कमरे में चले गए। निया ने मासूम सा चेहरा बनाकर अर्जुन को देखा तो उसने मुस्कुराकर अपनी बाहों को फैला दिया। निया जाकर उसके सीने से लग गई और मन ही मन बोली, तुम्हें बेवकूफ बनाना भी कितना आसान है अर्जुन, दो बातें प्यार से बोलो और तुम पिघल जाते हैं। किसी ने सच ही कहा है, प्यार इंसान से उसकी सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है और इंसान खुद को भुलाकर सामने वाले के हाथों की कठपुतली बन जाता है, जैसे तुम बन गए हो मेरे हाथों की कठपुतली। तुम हुक्म का वो इक्का हो जिसकी बदौलत मैंने इतने सालों इस घर पर राज किया, पर सॉरी बेबी, अब मुझे तुम्हें छोड़कर जाना ही होगा, क्योंकि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ पैसों, नाम, शोहरत, इन्हीं से प्यार है, और जिस हिसाब से शान तुम्हारे पीछे पड़ा है, वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, फिर मैं तुम्हारे साथ रहकर क्या करूंगी, इसलिए अब मुझे शान की जिंदगी में घुसना ही होगा। निया के लबों पर शातिर मुस्कान फैल गई, उसने अपनी स्माइल छुपाई और मायूस चेहरा बनाकर बोली, डैड मुझसे नाराज हो गए ना? अर्जुन ने प्यार से उसके गाल को छूते हुए कहा, डोंट वरी, अभी वो गुस्से में है, कुछ देर में नॉर्मल हो जाएंगे, तुम चलकर फ्रेश हो जाओ, फिर डिनर करेंगे साथ में, मैं डैड से बात करता हूँ। निया हल्का सा मुस्कुराकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई और अर्जुन गहरी सांस छोड़ते हुए अमरजीत जी के कमरे की तरफ बढ़ गया। टू बी कंटिन्यूड।